ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के निदेशक के साथ पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिए कि वह दिल्ली सरकार के शिक्षकों के तबादले पर तुरंत रोक लगाएं। दिल्ली से मेरठ तक आरआरटीएस स्टेशनों पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत जल्द ही फीडर बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 में लगाई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्य पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष 8 पाठ्य पुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता के सचिव एनसीईआरटी के निदेशक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और तनावमुक्त बनाने के लिए सस्ती कीमत और उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने आज सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान के तहत मॉनसून के दौरान वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनडीएमसी के कर्मचारियों ने लोगों को वेक्टर जनित बीमारियों से बचने के लिए जागरूक भी किया। इस अभियान का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है ताकि बारिश के कारण होने वाली स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। ये अभियान अगले महीने की 31 तारीख तक चलेगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिए कि वह दिल्ली सरकार के शिक्षकों के तबादले पर तुरंत रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि 5,000 शिक्षकों का अनिवार्य तबादले का आदेश गलत और शिक्षा विरोधी है। आतिशी ने आरोप लगाया कि 1 जुलाई को इस संबंध में आदेश निरस्त करने के बावजूद शिक्षा निदेशालय द्वारा अगले दिन शिक्षकों का अनिवार्य तबादला आदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों के पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत की बदौलत दिल्ली सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ है।
ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कायापलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं।
दिल्ली से मेरठ तक सभी आरआरटीएस स्टेशनों पर यात्रियों के लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत जल्द ही फीडर बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सभी 25 स्टेशनों के लिए आवेदन मांगा गया है। इसके अलावा रेंटल दुपहिया वाहनों और रेंटल साइकिल की भी व्यवस्था होगी। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ तक 34 किमी के सेक्शन में नमो भारत ट्रेनों की संचालन हो रही है। नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को रैपिड बाइक टैक्सी के किराए में 10% की छूट दी जा रही है। फिलहाल ये सुविधा गाजियाबाद और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशनों पर उपलब्ध है और जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर छोटे बच्चों के लिए 10 वर्षीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में लगभग 175 बच्चों का भाग लिया, जिनमें कुछ बच्चे सुधार गृह से भी शामिल हुए थे। इस 10 वर्षीय इसे दोबारा सुन लीजिए इस 10 दिवसीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सभी बच्चों ने अपने कलाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री भारद्वाज ने कहा कि 10 दिनों की इस वर्कशॉप में इन छोटे बच्चों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में ये बेहद जरूरी है कि हमारा समाज कला, संस्कृति और ड्रामा आदि से जुड़ा रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार शिक्षकों के तबादले के मुद्दे को उठाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हुए 670 करोड़ रुपए के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 60 से अधिक ऑपरेशन थियेटर्स खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार का लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को लोक निर्माण विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार के बारे में दिल्लीवासियों को जवाब देना ही चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी बताना चाहिए कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलता के कारण राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 48 अस्पतालों के कुल 235 ऑपरेशन थियेटर हैं, जिनमें से 62 ऑपरेशन थियेटर पूरी तरह से बंद पड़े हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सों सहित पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रति 100 बेड पर महज लगभग 202 ऑपरेशन थियेटर हैं, जो चिंताजनक है। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के 13 ऑपरेशन थियेटर में से 6 बंद हो गए हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज समाधान शिविर का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने शिविर में आए लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करवाया। उन्होंने बताया कि इस शिविर में कुल 26 शिकायतें आई थीं, जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया। श्री सिंह ने बताया कि जो शिकायतें लंबित रह जाती हैं, उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारी से जल्द समाधान करवाने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में ज्यादातर शिकायतें पेंशन और फैमिली आईडी से संबंधित आ रही हैं। आकांक्षी खंड कार्यक्रम के तहत आज हरियाणा के भिवानी जिला में के बहल कस्बा में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग की अधिकारी मायरा प्रदर्शनी व लोहारू खंड के उपमंडल अधिकारी अमित कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसकी रूपरेखा को आमजन को समझाया। इस मौके पर नीति आयोग की अधिकारी मायरा प्रदर्शनी ने कहा कि नीति आयोग की पहल से शुरू किए गए आकांक्षी खंड कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 7 खंडों का चयन किया गया है, जिसमें भिवानी जिला के बहल व लोहारू खंड भी शामिल हैं। संपूर्णता अभियान के तहत नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि व शासन में सुधार करते हुए इन अविकसित खंडों को सामाजिक व आर्थिक तौर पर उन्नत करना है, ताकि कमजोर वर्गों को विकास का वास्तविक लाभ मिल सके। उपमंडल दंडाधिकारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा सकते हैं।
संपूर्णता अभियान की शुरुआत आज बहल ब्लॉक में की गई है, जिसमें नीति आयोग से कंसल्टेंट मायरा मैडम ने पार्टिसिपेट किया है और इस अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसमें जो ब्लॉक जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम KPI बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पर हमें काम करना है, जिसमें आपके एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पोषण से संबंधित और तमाम अन्य विकास से संबंधित मुद्दों की जो है बात की जाएगी।
श्री अमित कुमार ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य करने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं के निपटान के लिए शिविर लगाने जैसे कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में पलवल जिला प्रशासन कल से हथिन ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाएगा। ऊपर उपायुक्त ब्रह्मजीत सिंह रंगी ने अभियान के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डॉ ब्रह्मजीत सिंह ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पिछड़े ब्लॉकों के विकास में तेजी लाना और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचकांकों को लक्ष्य शत प्रतिशत हासिल करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के निदेशक के साथ पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिए कि वह दिल्ली सरकार के शिक्षकों के तबादले पर तुरंत रोक लगाएं। दिल्ली से मेरठ तक सभी आरआरटीएस स्टेशनों पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत जल्द ही फीडर बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में लद्दाख के माउंट कांग योत्सो सेकेंड पर्वतारोहण अभियान पूरा करने वाले राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी की लड़कियों और लड़कों की टीम का स्वागत किया। उन्होंने प्रतिकूल मौसम जैसी बाधाओं का सामना कर इस उपलब्धि को हासिल करने पर कैडेटों की सराहना की। श्री सेठ ने कैडेट्स को 2022 की एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री के संबोधन से सीख लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा था कि एनसीसी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ही वे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करने में सक्षम रहे हैं। पिछले महीने माउंट कांग यात्सु द्वितीय पर्वतारोहण अभियान पूरा करने वाले दल में 27 लड़के और लड़कियां, 5 अधिकारी और 17 यात्री स्थायी प्रशिक्षक शामिल थे। कैडेटों ने कठोर प्रशिक्षण, मौसम अनुकूल और चिकित्सा मदद से ऊंचाई के प्रतिकूल प्रभावों का सामना किया। उन्होंने बर्फ से आच्छादित माउंट कांग यात्सो शिखर की चढ़ाई में दृढ़ता, समर्पण और साहस के साथ प्रतिकूल मौसम, भारी बर्फबारी, तेज हवा और न्यूनतम तापमान का भी सामना किया। केंद्र ने कई फर्जी और धोखाधड़ी वाली ईमेल के विरुद्ध अलर्ट जारी किया है। इन ईमेल में केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, दिल्ली के साइबर अपराध और आर्थिक अपराध इकाई तथा साइबर सेल से भेजे जाने वाले का दावा किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन पत्रों में ईमेल प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध बाल पोर्नोग्राफी, पीडोफीलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, यौन प्रदर्शन, सौंदर्यकरण के आरोप लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अलर्ट जारी किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस प्रकार की ईमेल पाने वाले व्यक्ति को इस तरह के फर्जी प्रयासों से सतर्क रहना चाहिए। लोगों को इस प्रकार के ईमेल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के मामलों की खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिनों के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि आज दक्षिण गुजरात में बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं राजधानी में आज कई इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के निदेशक के साथ पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिए कि वह दिल्ली सरकार के शिक्षकों के तबादले पर तुरंत रोक लगाएं। दिल्ली से मेरठ तक सभी आरआरटीएस स्टेशनों पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत जल्द ही फीडर बस की